वेद है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन, सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से हागै नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मंदिर का पुनर्निर्माण। श्रोताओ, हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हो, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाले। आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली। रूह के मसा से भर दे मसीहा, लौटे न कोई भी खाली। आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली। आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाले। नादिम है अपने गुनाह पे यीशु, गर्दन शर्म से झुकी है। नादिम है अपने गुनाह पे यीशु, गर्दन शर्म से झुकी है। बच जाएंगे पाप अगर एक नजर करम तूने डाली। आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली। जन्म नया एक सबको आता हो, तू ही बसे धड़कनों में। जन्म नया एक सबको आता हो, तू से धड़कनों में, जीने के ढंग में मेरे मसीहा, तेरे हो खून की लाली। मसा से भर दे मसीहा, लौटे न कोई भी खाली।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की निकटता में रहते हुए अपने प्रियों के साथ कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने परिवार और मित्रों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से हग्गै नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक के द्वारा हमारे बहुत सारे श्रोता मित्रों ने अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त किया और पत्र के द्वारा हमें जानकारी दी। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमें इस प्रकार से पत्र के द्वारा, फोन के द्वारा, मेल के द्वारा, एसएमएस के द्वारा उत्साहित करते हैं। कृपया आप निरंतर इसी प्रकार परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनी आशीषों को हम तक पहुंचाएं ताकि हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने पाए और हम एक साथ परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने पाए। तो इससे पहले कि आज हम सब फिर से अध्ययन में आगे जाएं, आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और मधुर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके सामर्थी और जीवित वचन का, सत्य वचन का अध्ययन कर सकें। आज जब हम हग्गै नबी की पुस्तक में अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को इस अध्ययन को समझने में सहायता और मदद प्रदान करें, उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ दें ताकि हर एक श्रोता भाई बहन जब आपके वचन में से सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए, उनकी कमजोरियों और त्रुटियों को उन्हें दिखाने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम सबसे बोले और बातचीत करें। इस घड़ी हम विनती करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन में निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, बीमारी अवस्था में हैं, अपने जीवन को समाप्त करने की योजना बना रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप उनसे बातचीत करें ताकि वे जाने पाए कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनके जीवन में परिस्थितियों को आने देते हैं ताकि वे आपकी ओर फिरें, आपसे प्यार करें, आपके प्यार को समझें। हाँ प्रभु, आज के वचन के द्वारा हर एक को आप आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम हग्गै नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की आज्ञा मानकर इसराइल ने निष्ठापूर्वक लगन के साथ काम करना आरंभ कर दिया है। उनके अगुए भी उनके साथ काम में लग गए हैं। वे पहाड़ पर से लकड़ी काट करके लाते और उन्हें छांटकर मंदिर निर्माण में उपयोग करते थे। उनका यत्न और निष्ठा देखकर परमेश्वर प्रसन्न हो गया। हग्गै के द्वारा उन्हें संदेश भेजा गया, मैं तुम्हारे संग हूं। इससे वे उत्साह से भर गए और परमेश्वर के भवन को बनाने में लग गए। जी हाँ, यह समय था 24 सितंबर 520 ईस्वी पूर्व। आइए हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे परमेश्वर की ओर से अनुमोदन। परमेश्वर की आज्ञा मानने पर परमेश्वर ने अपनी स्वीकृति प्रकट की। आप मेरे साथ निकाल लीजिए हगे नबी की पुस्तक 1:13। 1:13 में लिखा है, तब यहोवा के दूत हगै ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों से यह कहा, यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूं। जी हां, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे संग हूं। यह कैसी अद्भुत बात है। आपको प्रभु यीशु की भविष्यवाणी स्मरण होगी, कहता है मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। इसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 28:19-20 में पढ़ते हैं, जहां पर वह कहता है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। जी हां, उसने यह नहीं कहा कि बैठे रहो, मैं तुम्हारे संग हूं। उसकी आज्ञा मानने पर परमेश्वर आपके साथ होगा, अर्थात उसकी उपस्थिति और उसकी सहभागिता, उसकी आशीषें हमारे साथ होंगी। क्या इससे भी अच्छा और कुछ हो सकता है। अब देखिए अगुए जोश के साथ काम करने में लग जाते हैं। हगै नबी की पुस्तक 1:14 में लिखा है, और यहोवा ने शालतियेल के पुत्र जरुबाबेल को जो यहूदा का अधिपति था और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक को और सब बचे हुए लोगों के मन को उभार कर उत्साह से भर दिया कि वे आकर अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के भवन को बनाने में लग जाएं। किसी भी देश में वहां के अगुओं को काम करते देखना अति महत्वपूर्ण होता है। जरुबाबेल विकास प्राधिकरण का प्रधान था। वह राजसी परिवार से था। उसके पिता का नाम शालतियेल था, जिसका अर्थ है परमेश्वर से प्रार्थना में मांगना। यहोशू यहोसादाक का पुत्र था। यहोसादाक बेबीलोन के आक्रमण के समय यहूदा का महायाजक था। अतः यहां नागरिक और धार्मिक अगुओं की सहभागिता है कि परमेश्वर के काम को पूरा किया जाए। अब हगै दूसरा संदेश सुनाता है और उसकी तिथि भी देता है। आइए हम पढ़ें हगै 1:15 में कहता है, यह दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के 24वें दिन हुआ, अर्थात सितंबर 24 520 ईस्वी पूर्व। जी हां, पहला संदेश पहला सितंबर 500 ईस्वी पूर्व में लाया गया था। वह उनके लिए परमेश्वर की चुनौती थी। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानकर एकजुट होकर लकड़ियां काटकर मंदिर का निर्माण करना आरंभ कर दिया था। अब 24 दिन बाद हगै परमेश्वर का दूसरा संदेश लाता है जो उसकी उपस्थिति का आश्वासन है। हगै की पुस्तक से प्रकट है कि वह एक सुव्यवस्थित मनुष्य था। वह एक व्यवस्थापक भी था। वह एक कर्मठ मनुष्य था। उसने मंदिर निर्माण में इसराइल की सहायता की। उनके साथ काम करते हुए उसने लगातार उन्हें प्रोत्साहित किया और उन्हें चुनौती दी। इसका परिणाम महान होना था। जी हां, कि परमेश्वर प्रसन्न होगा, परमेश्वर का महिमान्वयन होगा। और इस रीति से वे अपने कार्यों को करते गए। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि अध्याय एक समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए अध्याय दो से अध्ययन को जारी रखेंगे। अध्याय दो का विषय है इसराइल का उत्साह भंग, परमेश्वर द्वारा प्रोत्साहन, व्यवस्था की पुकार, सिद्धांत की व्याख्या, परमेश्वर की योजना का प्रकाशन, भावी प्रत्याशा। अध्याय दो में हम इसराइलियों का उत्साह भंग होते और उन्हें परमेश्वर का प्रोत्साहन पाते हुए देखते हैं। उनके उत्साह के भंग होने का कारण था कि यह मंदिर सुलेमान के मंदिर के तुल्य भव्य नहीं था, परंतु परमेश्वर अपनी प्रतिक्रिया दिखाता है। तो आइए हम देखें इसराइल का उत्साह भंग। हगै नबी के पुस्तक दो अध्याय उसके एक पद में लिखा है, फिर सातवें महीने के 21वें दिन को यहोवा का यह वचन हगै भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। ध्यान दें, यह सातवें महीने की बात है। इससे पहले परमेश्वर का संदेश छठवें महीने में आया था। इसका अर्थ है कि उन्हें काम करते करते एक महीना बीत गया या हो गया था। उन्हें काम व्यवस्थित करने में 24 दिन लगे थे और अब मंदिर की दीवारें उठने लगी थी और यह देख वे उत्साह से भरे हुए थे और उन्हें परमेश्वर का उत्साहवर्धक वचन भी स्मरण था कि मैं तुम्हारे संग हूं। अब हम निराशा की यह दूसरी बात देखते हैं। हगै नबी की पुस्तक दो अध्याय के दो पद में लिखा है, शालतियल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुबाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशु महायाजक और सब बचे हुए लोगों से यह बात कह। यह संदेश उन्हीं लोगों को दिया गया है जिन्हें पिछले अध्याय में परमेश्वर ने प्रोत्साहित किया था। वही लोग, वही अगुए। यह हगै की भविष्यवाणी की सेवा में दूसरी बाधा थी जिसका निवारण करना उसके लिए आवश्यक था। हगै नबी की पुस्तक दो अध्याय के तीन पद में आगे हम पढ़ते हैं जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? मेरे मित्रों, बेबीलोन की बंधुआई से लौटने वालों में अधिकांश वृद्ध जन सुलेमान के मंदिर के वैभव को भूले नहीं थे क्योंकि उन्होंने सुलेमान के उस मंदिर को देखा था। बंधुआई के समय वे बहुत छोटे थे परंतु उन्हें स्मरण था, यह मंदिर उस मंदिर की तुलना में कुछ भी नहीं था। वह मंदिर तो एक प्रकार से मोतियों का बक्सा था। मैं इस तीसरे संदेश की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लय व्यवस्था की पुस्तक 23 अध्याय में लिखा है, पद 34 में, सातवें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे, यहूदियों के एकत्र होने का अंतिम पर्व। मेरे विचार में उन्होंने यथा संभव प्रयास किया था कि झोपड़ियों के पर्व तक मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाए। अब जब ये वृद्ध जन मंदिर में आए तो वे अत्यधिक निराश हुए क्योंकि यह मंदिर सुलेमान के वैभवशाली मंदिर के सामने कुछ भी नहीं था। हम एजरा नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 8 से 13 पद में इस समय का अधिक स्पष्ट वर्णन पाते हैं। लिखा है, उनके परमेश्वर के भवन में जो यरूशलेम में है आने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में शालतियल के पुत्र जरुबाबेल ने और यहोसादाक के पुत्र यहोशू ने और उनके अन्य भाइयों ने जो याजक और लेवीय थे और जितने बंधुआई से यरूशलेम में आए थे उन्होंने भी काम को आरंभ किया और 20 वर्ष अथवा उससे अधिक अवस्था के लेवियों को यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त किया। तब यीशु और उसके बेटे और भाई और कदमियल और उसके बेटे जो यहूदा की संतान थे और हिनादाद की संतान और उनके बेटे परमेश्वर के भवन में कारीगरों का काम चलाने को खड़े हुए। मेरे मित्रों, जब राज मिस्त्रियों ने यहोवा के भवन की नींव डाली तब अपने वस्त्र पहने हुए और तुरहियां लिए हुए याजक और झांझ लिए हुए आसाप के वंश के लेविये इसलिए नियुक्त किए गए कि इसराइलियों के राजा दाऊद की चलाई हुई नीति के अनुसार यहोवा की स्तुति करें। अतः वे यह गा कर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। लिखा है, वह भला है और उसकी करुणा इसराइल पर सदैव बनी है। जब वे यहोवा की स्तुति करने लगे तब सब लोगों ने यह जानकर कि यहोवा के भवन की नींव अब पड़ रही है ऊंचे शब्द से जय जयकार किया। संभवतः नींव के साथ दीवारें भी उठाई जा चुकी थी, परंतु बहुतेरे याजक और लेविये और पूर्वजों के घराने के मुख्य पुरुष अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था, जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी तब वे फूट फूट कर रोने लगे और बहुतेरे आनंद के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। इसलिए लोग आनंद के जय जयकार का शब्द लोगों के रोने के शब्द से अलग पहचान न सके, क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे और वह शब्द दूर तक सुनाई देता था। यहां पर दो प्रकार के लोग थे, वे बुजुर्ग लोग, वे बूढ़े लोग जिन्होंने परमेश्वर के उस मंदिर को देखा था जिसे सुलेमान ने बनवाया था। उसके सामने यह मंदिर कुछ भी नहीं था और यही कारण है कि उस पुराने वैभव को याद करते हुए बूढ़े लोग रो रहे थे, परंतु नई पीढ़ी के लोग आनंदित थे क्योंकि उन्होंने उस पहले के मंदिर को नहीं देखा था। इस मंदिर के निर्माण को लेकर वे जोश से भरे हुए थे और परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। मेरे प्रियो, उस जयनाथ के नीचे दबी एक और आवाज थी, वृद्धों का अर्थनांद, क्योंकि यह नया मंदिर सुलेमान की मंदिर की तुलना में झोपड़ी का सा दिखाई दे रहा था। उनके इस रुदन के कारण और सुलेमान के मंदिर के साथ तुलना करने के कारण उनका उत्साह ठंडा पड़ गया। एक बार हमारी कलीसिया की फलदायक एवं उत्साहवर्धक सभाओं के बाद हमारे युवा वर्ग के साथ मैं आराधनालय की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था और चर्चा हो रही थी कि हमारी सभाएं बहुत अच्छी रही तथा अनेकों ने प्रभु यीशु को ग्रहण करके उद्धार प्राप्त किया। उसी समय वहां एक बड़ी बड़ी मूछों वाला वृद्ध आया और कहने लगा, जब मैं युवा था तब यहां एक सभा हुई थी जो वास्तव में एक अति महान आत्मिक सभा थी। ऐसी बातें आपके उत्साह में जंग लगा देती है। उसकी व्याख्या के अनुसार हमारी सभा नगण्य सी प्रतीत होने लगी। आगे चल करके मुझे ज्ञात हुआ कि वह आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर रहा था, परंतु उसकी बातों से युवा वर्ग में निराशा तो छा गई थी। परमेश्वर इस परिस्थिति को कैसे संभालेगा? कलीसिया में तो हम एक समिति बना देते हैं कि वही कुछ करे। समिति के विषय किसी ने कहा है कि समिति उन मनुष्यों का समूह है जो अपने आप को कुछ कर नहीं सकते, परंतु एकजुट यह निर्णय अवश्य लेते हैं कि कुछ भी करना असंभव है। किसी और ने कहा है कि समिति अयोग्य मनुष्यों का समूह है जिसे उदासीन लोग चुनते हैं कि वे अनावश्यक काम करें, परंतु परमेश्वर ने समिति नहीं बनाई। उसने समस्या का सीधा सामना किया और अपना विचार व्यक्त किया। मेरे श्रोता मित्रों, आज आप किस प्रकार की समिति बना रहे हैं? क्या आप ऐसी समिति बना रहे हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं? क्या आज आप उन पर निर्भर हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि वह सीधा सामना करता है। मेरे मित्रों, आइए आज हम अपने आप को प्रभु की निकटता में लाएं और जांचें और देखें कि हमारी समिति क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं, हमारी कलीसिया क्या कर रही है, क्या हम परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके कार्यों को करने के लिए हम तत्पर हो रहे हैं या यूं ही बढ़ा चढ़ाकर बातों को कर रहे हैं। आज हमें अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। हगै यहां पर इसराइलियों के जीवन के द्वारा हमें भी आगाह करता है, चेतावनी देता है, चुनौती देता है कि हम उसकी बातों को सुने और समझें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया मजबूत हो, परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाया जाए, उसके भवन का सही निर्माण हो, उसके कार्यों में लोग आगे बढ़ें। आज बहुत से लोग आनंदित हैं, परंतु बहुत से लोग रो रहे हैं। कारण, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के उस उद्धार के आनंद को चख लिया है। कुछ लोग हैं जो अभी तक उस उद्धार के आनंद को नहीं चखे, और यही कारण है कि कलीसिया में रोना है। मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन को प्रभु की निकटता में लाएं और प्रभु से कहें कि वह हमारी सहायता करे, हमारी कलीसियाओं को सहायता करे, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के उन अद्भुत बातों को समझकर प्रभु के निकटता में आ जाए। आज आपको फिर से चुनौती और निर्णय का सामना करना है। मेरे मित्रों, यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने प्रभु के वचन में से आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करे और आप सबकी अगुवाई करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।